वेदाविनाशिनम् नित्यम् कथं सपुरुष पार्थ संवादयति हन्तिकम्
ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय।
उसे बहुत महत्व है आत्मा परमात्मा ब्रह्म भगवान जीवात्मा सूक्ष्म शरीर शरीर बड़ा गंभीर विषय है। पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा? श्लोक संख्या
2.8 में हमने क्या पढ़ा? न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणं हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इसमें हमने चार निषेध और चार विशेषताएं है कि नहीं? आत्मा के चार निषेध और चार विशेषताएं। क्या है चार निषेध? न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। क्या है? न जायते म्रियते, ये न तो जन्म लेता है न इसका मृत्यु होता है। न जायते म्रियते वा कदाचन, कदाचन मतलब ऐसा भी नहीं है कि बस आ गया कि आ गया खत्म हो गया बस, ऐसा भी नहीं है। और न हन्यते हन्यमाने शरीर, इसका शरीर नष्ट होने पर भी इसका अंत होता नहीं है। ये चार विशेष है, चार विशेषताएं क्या है? अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराण, अजो है अज, अजो मतलब अजन्मा, नित्य हमेशा है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आत्मा नहीं था। उस दिन में गया उधर देखने के लिए आत्मा ही नहीं था, शरीर दिख गया ही नहीं था, ऐसा कभी है? हमेशा है, नित्य है, शाश्वत है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर शाश्वत, इसके ऊपर भूत भविष्य का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अजय नित्यम शाश्वत एवं पुराणम, पुराणम मतलब पुराण नवम, पुराना है लेकिन इस युग के लिए एप्लीकेबल है पुराना लेकिन फिर भी नया है, पुराना होके भी नया है, पुराणम पुराण नवम, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणम। तो ये चार निषेध है और चार विशेषता है। निषेध ये है कि ये कभी मरता नहीं है, शाश्वत, कभी जन्म नहीं लेता है, ये सब है। हमने प्रश्न हमारा हुआ था कि जब इतना सब कुछ है तो इस आत्मा को समझने में प्रॉब्लम क्या आती है? हम आत्मा को समझने में हमको प्रॉब्लम क्या आती है? आती तो है कि नहीं आती है? आती तो है, क्या प्रॉब्लम है? व्हाई हम लोग आत्मा को क्यों समझ नहीं पाते, आत्मज्ञान को क्यों नहीं ले पाते, क्या कारण है? हमारी दृष्टि, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, सब कुछ भौतिकता में लीन है पूरी तरह से। इसलिए एक फॉर्मूला बताया थे अंतिम सारांश फॉर्मूला क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया था ना लास्ट टाइम, हाँ सही है क्या? किसी ने नहीं लिखा फॉर्मूला, फॉर्मूला एकदम मेन है। फॉर्मूला एक बार आपको आ गया तो पूरा गणित आप सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला याद आ गया तो आपको पूरा श्लोक याद हो जाएगा। हाँ क्या? नहीं वो तो दूसरा फॉर्मूला है, मेन फर्स्ट पहला स्टेप, वेरी गुड। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मटेरियल डिजायर्स, मतलब आध्यात्मिक प्रगति इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भौतिक कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं। मतलब जितनी ज्यादा भौतिक इच्छा है उतनी कम आध्यात्मिक प्रगति, जितनी ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति उतनी कम भौतिक इच्छा है। मतलब जिस व्यक्ति को भौतिक इच्छाएं कम है, जिसकी वासनाएं कम है, नियंत्रित है, इसका अर्थ है कि वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति करता है। और जिसकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत कम है, कितने भी बार बोलो कि प्रभु जी चलो सत्संग में तो आता ही नहीं है, अनेकों काम में बोलता है, तो इस प्रकार से जो काम है, काम 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 मतलब वासनाएं, इच्छा है, तो उस व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति हो नहीं सकती। और क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रगति करना नहीं चाहता, इसलिए उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता, है कि नहीं? हो सकता है? उसको पता ही नहीं चलेगा वो कौन है जीवन भर। तो ये पिछले श्लोक में हुआ था, अब इस श्लोक में है वेदा विनाशिनम नित्यम एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घाती हंतिकम, कम घाती हंतिकम। इसमें कहा हे पार्थ, जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी, अयन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? आपको ये प्रश्न अब निश्चित हुआ होगा कि कितनी बार कितनी बार हुई वो बात, हमने जब से दसवां श्लोक शुरू किया है, दसवें श्लोक से तो 21 हुआ, 10-11 श्लोक हुए उसमें, 10-11 श्लोक में कम से कम 10-11 बार ये तीनों बातें आई है। कौन सी? अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत। और भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन नहीं बोल रहा है। और अर्जुन बार बार क्या बोल रहा था? अर्जुन बार बार बोल रहा था मेरा कैसे होगा, मुझे पाप लगेगा, फिर सुख कैसे प्राप्त होगा। मतलब अर्जुन बार 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 दूसरे अध्याय के पांचवें चौथे श्लोक तक बार बार क्या बोल रहा था? शरीर की बातें बोल रहा था, रिलेटेड टू बॉडी। और भगवान उसके बाद जब भगवान बोलना शुरू किए तब से अभी तक एक ही बात बोल रहे। क्या बोल रहे? अविनाशी नित्य है, अविनाशी है, शाश्वत है, अजन्मा है। तो ये देखिए, भगवान हमारे सारे भौतिक, इसलिए कहते हैं मटेरियल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। इफ यू हैव मटेरियल प्रॉब्लम फाइंड आउट स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। अच्छे मतलब इसका अर्थ यह है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन क्या है? आध्यात्मिकता में ही इसका सोल्यूशन है। चाहे हम कितने भी घूम फिर कुछ भी सोचे, पर वास्तविक उसका उत्तर, उसका सोल्यूशन कहां पे है? स्पिरिचुअल। तो अब हम देखते हैं दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक, मतलब दो श्लोक पहले का, 2.19। क्या है 2.19? पढ़िए। नायम हंती न हन्यते। अब देखिए इसका अंतिम लाइन क्या है? नायम हंती न हन्यते। दिशावे श्लोक का देखिए क्या है? न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब 21वें श्लोक का अंतिम लाइन क्या है? कम घातयन्ति हन्ति कम। कुछ सीक्वेंस है? क्या सीक्वेंस है? हन्यते हन्ति हन्यमाने, तीनों श्लोक में इसका कनेक्शन क्या है? इस श्लोक में, 19वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, ये दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। इस श्लोक में भगवान ने उस व्यक्ति के बारे में कहा है जो अज्ञानी है, जो जानता ही नहीं, कोई जानकारी नहीं है उसके पास, उसके पास नो इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। कह रहे क्या है? वो अज्ञानी है। कौन? जो इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है, मतलब नष्ट होने वाला समझता है। देखिए 19वें श्लोक में ध्यान से पढ़िए उसको। भगवान उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो व्यक्ति अज्ञानी है, जो जानकारी नहीं रखता है, जो जानता नहीं है। क्या नहीं जानता है? कौन सा अज्ञान है? वो ये नहीं जानता कि इस जीवात्मा को वो मारने वाला समझता है और मरने वाला समझता है, वो अज्ञानी है। अब इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है, देखिए पढ़िए इसका तात्पर्य, ट्रांसलेशन, ये जानता है। 19वें श्लोक का क्या है? जो मारने वाला समझ, मरने वाला मारने वाला समझता है वो अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा को न तो मारता है न मारा जाता है, मतलब वो नहीं जानता है। और ये जानता है, कौन जानता है? पढ़िए, जो व्यक्ति यह जानता है कि क्या जानता है? जो व्यक्ति यह जानता है, मतलब देखिए फर्क क्या है दो व्यक्तियों में? जानकारी, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कि नहीं? वी आर फेमस, इंडियंस आर फेमस फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी है कि नहीं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से सारे भारतीय युवक विदेशों में जाके अपना स्किल वहां पे प्रूव करते, सिद्ध कर रहे हैं, इतना एक्सपर्ट है जानकारी रखने में। कहां वो अपनी स्किल को प्रदर्शित कर रहे हैं भारतीय युवक, कहां, किस, कौन से देशों में, पाश्चिमात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में जाके अपना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, अपना स्किल वहां पे दिखा रहे। क्या, कौन सा स्किल? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। लेकिन हमारे भारतीयों में इससे भी बड़ा स्किल है। कौन सा? स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। वी आर फॉलोअर ऑफ ST, नॉट IT ओनली। IT सिंपल, ST स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। जो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में स्किलफुल है वो ना केवल वेस्टर्न कंट्री में काम कर सकता है या अपना स्किल प्रदर्शित कर सकता है, वो पूरे यूनिवर्स में अपना स्किल प्रदर्शित कर सकता है। ब्रह्म लोग, स्वर्ग लोग, उसके ऊपर महर, तप लोग, महर लोग, ऊपर के सातों लोग, उसमें इज वेरी फेमस। वो लोग जो उधर के लोग हैं, ब्रह्म लोग और स्वर्ग लोग और ये सब ऊपर के जो लोग हैं, ऊर्ध्व दिशा के जो लोग हैं, वो भी क्या करते हैं? ST प्रोफेशनल को हायर करना चाहते हैं, नॉट IT प्रोफेशनल, ST प्रोफेशनल्स को, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में जो एक्सपर्ट है उनको उधर हायर करते हैं, उधर के ऊपर के लोगों में जाते हैं। तो ये भारतीयों की विशेषता है कि दे आर वेरी एक्सपर्ट इन स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, आध्यात्मिक ज्ञान में वो एक्सपर्ट है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे कैटेगरी में आते हैं, जो 21वां श्लोक है वो क्या कहता है, जो वो ये जानते हैं, क्या जानते हैं, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा शाश्वत है, ये वो जानते हैं, इसलिए वो ज्ञानी है। और बाकी सब 19वें श्लोक में जो है वो है अज्ञानी है ना। तो इस तीनों श्लोकों में कहा है, 19 में बताया कि ये जीवात्मा हत्या नहीं करता, 20वें श्लोक में कहा कि शरीर का मृत्यु या शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता, और 21वें श्लोक में कहा है जीवात्मा किसी की भी हत्या नहीं करता, है ना। ये तीनों पॉइंट आपको याद है, तीनों हो चुके हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन। 19वें श्लोक में हुआ है कैसे अजन्मा है, आत्मा अजन्मा कैसे है, कैसे हमने उसकी चर्चा की थी, कैसे अजन्मा है,
ब्रह्मा जी का,
हाँ, क्योंकि शरीर उत्पन्न, शरीर की वजह से आत्मा है, शरीर आत्मा को जन्म नहीं देता है, आत्मा शरीर को जन्म देता है, शरीर आत्मा को जन्म नहीं देता है, अजन्मा है, वो कभी बूढ़ा भी नहीं होता है, होता है शाश्वत है, इसके ऊपर वर्तमान, भूत और भविष्य का इफेक्ट नहीं होता है, है ना। ये तीनों श्लोक पहले हो चुके हैं, इसलिए इसको फिर से रिफ्रेश कीजिए, फिर से पढ़िए, सुनिए, जो भी पॉसिबल है अपने नोट्स पढ़िए, क्योंकि बहुत महत्व का विषय है। आगे आगे और ज्यादा आत्मा 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 इनका चर्चा करते करते ही हम सेल्फ रियलाइज हो जाएंगे। यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, केवल आत्मा अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अजन्मा है, ऐसा बोलते 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 हमको आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। सीरियसली गंभीरता से आप उसको समझते जाएंगे, प्रत्येक श्लोक को गंभीरता से ध्यान देंगे तो वास्तव में आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान ने इतनी बार उसको कहा, इतनी बार कहा है, और अर्जुन ने इतनी बार सुना है, है ना। तो इस प्रकार से पहले अध्याय का 40वां श्लोक देखिए।
दृष्टा तो आशय ध्यान
शंकरो नर कावे कुल ध्यान कुल पूज्य अतितम पितरो घोषा लुप्त पिंडो सुखा का क्रिया जाति धर्म कुल धर्म उत्सन्न कुल धर्माण मनुष्याण जनार्दन नरके नियते वासो भवति तृष्ण अश्रुष।
ये सारे श्लोक में अर्जुन क्या कह रहा है? पाप। वो कह रहा है कि कितना पाप लगेगा मुझे। कहा अहो अहो वत महत् पापम, अहो वत महत् पापम। कितने आश्चर्य की बात है कि हम पाप करने के लिए तुले हुए उद्युत है, शस्त्रास्त्र लेके हम पाप करना चाहते हैं। कितनी भयंकर बात है, मारना चाहते हैं, कितनी भयंकर बात है, ये कह रहे हैं अर्जुन। और भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि अविनाशी अगर अर्जुन नहीं, यहां तक अर्जुन यहीं तक नहीं सोचते, अर्जुन ये सोच रहे हैं कि इतना सारा पाप है वो तो मैं करूंगा, शस्त्रास्त्र तो मैं चलाऊंगा, शस्त्र चलाने से मृत्यु होगी, मैं पाप करूंगा, लेकिन मुझे पाप को उद्युत करने के लिए कौन उत्सर है? तो आप भी तो थोड़े बहुत पार्टनर है मेरे, आप भी मेरे पार्टनर बन जाएंगे, आपको भी थोड़ा पाप लगेगा। ये अंदर का भाव है अर्जुन का, यह भाव को समझते हुए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। भगवान लगभग इस प्रकार से बोल रहे कि भाई आत्मा अजन्म है, अनित्य है, अविनाशी है, वो मरता नहीं है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई पापी व्यक्ति है, कोई दोषी व्यक्ति है, गुनहगार है, और उसको कोर्ट में लिया जाया गया, वास्तव में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हिंसा करोगे तो शिक्षा मिलेगी, मृत्यु दंड की शिक्षा हो सकती है। कोई हिंसा करता है तो उसको मृत्यु दंड की शिक्षा होती है ना? तो हिंसा करने से मृत्यु दंड की यदि शिक्षा होती है तो जो जज है, न्यायाधीश, वो भी तो हिंसा कर रहा है, नहीं कर रहा है? वो क्या बोलता है? इसको फांसी की शिक्षा दो, जाओ मरते दम तक फांसी, अंतिम सांस तक इसको फांसी पे लटकाओ, फांसी पे लटकाओ। तो वो भी तो हिंसा कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो न्यायाधीश भी हिंसक हो गया, पापी हो गया क्या? बताइए, नहीं हुआ। न्यायाधीश कैसे पापी हो सकता है? तो भगवान यह कह रहे हैं कि भाई एक पहली बात तो यह है कि जो मरने मारने की बात है इसमें कोई मर ही नहीं रहा है। कौन मर रहा है इसमें? विशेषता तुमने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है उसके अनुसार आत्मा तो मरता नहीं है, तो फिर तो दुख की क्या बात है, पाप की क्या बात है? कोई पाप कर ही नहीं रहा है। तुम स्वयं जब पाप नहीं कर रहे हो तो मैं कैसा पाप कर सकता हूं? भगवान कहते हैं जब तुम्हारा ही पाप नहीं होगा, तुम खुद उनको मारने वाले हो, तो मेरा केवल उकसाने से थोड़ी तुमको मैं पापी बनूंगा। तो मारने से पाप नहीं होगा तो उकसाने से क्या पाप होगा? इस प्रकार से भगवान यहाँ पे कहते हैं। इसका दूसरा भाव है कि शरीर में ये गुण नहीं, जैसे कोई बात हम कहते हैं, कोई निगेटिव बताना हो तो अफर्मेटिव बोलते हैं, कोई निगेटिव बात बोलनी हो तो अफर्मेटिव बात बोलते हैं, या अफर्मेटिव बोलना हो तो कभी कभी निगेटिव बोलते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत है और नित्य है, इसका अर्थ है आत्मा ये सब कुछ है पर शरीर ये सब कुछ नहीं है। इसका अर्थ क्या है? आत्मा अविनाशी है, इसका अर्थ है शरीर का नाश होता है। आत्मा अजन्मा है, इसका अर्थ है शरीर जन्म लेता है। फिर क्या है? शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, इसका अर्थ है कि शरीर बदलते रहता है, नश्वर है ना? वर्तमान भूत भविष्य का उसके ऊपर है ना, काल का उसके ऊपर प्रभाव होता है, शाश्वत है। मतलब भगवान एक ही सेंटेंस में दो बातें बोलना चाह रहे हैं कि आत्मा अजन्मा शाश्वत और नित्य है परंतु शरीर मरता है, शरीर को मृत्यु है, शरीर नष्ट होने वाला है, शरीर नश्वर है, शरीर के ऊपर काल का प्रभाव है। अभी तो समझो अर्जुन, शरीर की बात सोच रहे हो, शरीर से रिलेटेड ही बात को समझ रहे हो। इस बात से भगवान यहां समझाना चाहते हैं, हम देखते हैं कि शरीर का जहां तक, शरीर की जहां तक बात है, शरीर जन्म लेता है ना। हमने क्या बताया था पिछले श्लोक में, जन्म कौन लेता है?
शरीर।
आत्मा लेता है क्या?
नहीं।
ध्यान में रखिए, शरीर जन्म लेता है क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस से पहले शरीर उत्पन्न होता है और फिर आत्मा उसमें जाता है। कभी हमने ऐसा देखा नहीं कि आत्मा ने जन्म ले लिया, शरीर अभी तक आया ही नहीं, ऐसा हुआ? अरे सब वेट कर रहे, डॉक्टर लोग बॉडी आने का, आत्मा आ गया। ऐसा कभी सुना? कभी नहीं सुना, अभी तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो इस प्रकार से शरीर जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात क्योंकि उसके ऊपर काल का प्रभाव होता है, शरीर के ऊपर काल का प्रभाव होने से उसमें वृद्धि होती है। तो पहले इतना, फिर इतना, फिर बड़ा बड़ा, एकदम बड़ा हो जाता है ना, उसमें वृद्धि होती है, शरीर में वृद्धि होती है। आत्मा में वृद्धि होती है क्या? अरे जब छोटा था तो आत्मा मेरा इतना था, इतना बड़ा हो रहा, आत्मा इतना बड़ा हो गया। हार्ट को हेवी जा रहा है, मेरा हार्ट का वजन बढ़ रहा है, चेस्ट एकदम इतना फुल गया, इतना आत्मा का शरीर अंदर हो गया हार्ट के पास। आत्मा की वृद्धि नहीं होती है, शरीर की वृद्धि होती है। वो वृद्धि भी ऐसे होती ही रहती है, ऐसी बात नहीं है कि शरीर की वृद्धि होना शुरू हो गया, अब रोज शरीर बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है, रोज 100 साल का जीवन है तो 100 साल तक बढ़ी रहा है, बढ़ी रहा है, बढ़ी रहा है, ऐसा नहीं है। एक समय आता है जिस समय शरीर की वृद्धि भी रुक जाती है, स्टॉप हो जाता है, बढ़ना बंद हो जाता है। 22-23 साल ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक, 25 साल के बाद शरीर बढ़ना बंद हो जाता है। फिर शरीर क्या है, दूसरा प्रोडक्ट तैयार करता है, मतलब वंश उत्पन्न करता है। आत्मा से दूसरा आत्मा उत्पन्न होता है क्या? बहुत से लोग कहते हैं कि आत्मा से दूसरा आत्मा उत्पन्न होता है। हम ब्रह्म विमोहन लीला की चर्चा किए हैं लास्ट में, ब्रह्मा जी ने सब लोक दखाओं को चुरा के लेके गए, पर भगवान ने वही आत्मा से दूसरे आत्मा नहीं बनाए, अपने आप का विस्तार किया, विधि। तो इस प्रकार से क्या है, वृद्धि होती है, अस्तित्व मतलब फिर थोड़ा एक्सपांशन प्रोग्राम होता है, विस्तार का प्रोग्राम होता है, अस्तित्व का अस्तित्व बनता है, और फिर डिके, फिर क्षीण होना शुरू होता है, फिर एवरी ऑल्टरनेट डे सर दर्द, बदन दर्द, सर दर्द, हाथ दर्द, पेट दर्द, क्षीण होना शुरुआत हो जाती है, शरीर क्षीण होते रहता है। आत्मा क्षीण होता है क्या? कभी कभी सुना है कि भाई आज उनका आत्मा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि आज उनका आत्मा क्षीण हो गया इसलिए भक्तिदान हॉस्पिटल में एडमिट है। वहां तो क्षीण आत्मा भी सही हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल का नाम क्या है? भक्ति वेदांत, नाम में शक्ति है ना। तो आत्मा कभी क्षीण नहीं होता, लेकिन शरीर उस लिमिट के बाद, एक्सपांशन प्रोग्राम खत्म होने के बाद क्षीण होना शुरू होता है, धीरे 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 जीतते रहता है। आत्मा के बारे में ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है अंत में? विनाश, शरीर विलीन हो जाता है पंच तत्वों में, आत्मा नहीं होता है। भगवान इसलिए यहां इस श्लोक में फिर ये बात बोल रहे हैं, अजन्मा है, शाश्वत है, अविनाशी है, अप्रमेय है। एक श्लोक में कहे अप्रमेय है, अप्रमेय मतलब जिसको गिन नहीं सकते, कैनॉट मेजर, है ना, इसके पहले एक श्लोक में कहा है। तो इस प्रकार से हम यह देख सकते हैं कि शरीर के साथ सब कुछ बुरा होता है, अच्छा भी होता है, आत्मा न्यूट्रल है, उसको अच्छा ही बुराई से कुछ लेना देना नहीं है। आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, आत्मा के बारे में भगवान ने यहाँ पे मरने मारने वाली बात क्यों कही? नहीं, आत्मा से रिलेटेड भगवान ने इतने शब्द क्यों कही? इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, हंति मारना हत्या, आत्मा के बारे में मरने मारना मरना मारना इस प्रकार से बात इसलिए यहाँ कही गई क्योंकि बात कहाँ पे हो रही है? कॉन्फ्रेंस हॉल में हो रही है क्या? नहीं, कहाँ हो रही है? युद्ध में क्या होता है? मरते और मारते दो बातें होती है, तीसरी बात नहीं होती, मारो या मरो। इसलिए मरने मारने जैसी स्थिति में सब कुछ हो रहा है, इसलिए भगवान उस मरने मारने की बात आत्मा से जोड़ रहे हैं, उससे रिलेटेड बात भगवान कर रहे हैं। और भगवान कहना चाहते हैं, भगवान अर्जुन को इस बात को बताना चाहते कि अर्जुन तुम युद्ध करो, कोई पाप वगैरह नहीं है, ऐसे इस प्रकार से हिंसा करने से, इस प्रकार से पापियों को मारने से तुम न्याय का काम कर रहे हो, जो न्यायाधीश करता है वो काम तुम कर रहे हो, तुम्हें कैसा पाप लगेगा? तुम कोई भी पाप का कारण नहीं बनोगे, तुम कोई भी हत्या, हंती लिखा है ना, हन्नते हन्न हत्या हंती, किसी की भी हत्या का कारण तुम नहीं बदलोगे, किसी के भी शरीर को नष्ट करने का कारण तुम नहीं बनोगे, लेकिन तुम केवल कारण बनोगे किस चीज का? केवल शरीर को बदलने का कारण तुम बनोगे। शरीर, आत्मा शरीर को बदल देता है ना, नहीं चाहिए शरीर, दूसरा चाहिए, तो शरीर को बदलने का कारण तुम हो, तुम्हारे निमित्त से इन लोगों के केवल शरीर बदलेंगे। जो भीष्म पितामह तुम देख रहे हो अभी 100 साल के हैं, जब तुम इनका शरीर बदल दोगे, बूढ़ा वृद्ध अवस्था पहुंच गए हो, अवस्था में है वो, जब इनका तुम शरीर बदल दोगे तो वो 20 साल का युवा अवस्था प्राप्त करेंगे, तो तुमको तो आनंद होना चाहिए, शरीर ही बदल रहे, आत्मा का मृत्यु नहीं हो रहा, होता ही नहीं है, तो पाप नहीं लगेगा। और तुम जो सोच रहे हो तुम हत्या का कारण हो, तुम हत्या का कारण नहीं हो, तुम पाप का कारण नहीं हो, केवल इनका शरीर बदलने का तुम कारण हो, जो कि उनके लिए भी बहुत अच्छा है और तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा है। इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में बताना चाहते हैं। फिर कहते हैं, इस श्लोक का तात्पर्य है भगवान का और दूसरा सार कहने का यह है कि देखो, उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु, उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु मिटती है, नहीं, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो जन्म लेती, उत्पन्न होती है, निर्मित होती है, वो मिटती ही मिटती है, गारंटी है। कोई ऐसी वस्तु है, वस्तु की बात कर रहा हूं, कोई ऐसी वस्तु जो आपने देखी है और बिल्कुल उसमें जरा भी दिखे क्षय, कुछ कमी नहीं है, प्रत्येक वस्तु जो निर्मित होती है, जो उत्पन्न होती है, वो मिट्टी है, आपको उसको मिटाने की जरूरत नहीं है। ये सब लोगों ने, इनके शरीरों ने जन्म लिया है, ये मिटने वाले हैं, ये खत्म ही हो गए, तुमको मिटाने की आवश्यकता क्या है? ये मत सोचो कि तुम मिटा रहे हो और पाप के भागीदारी बन रहे हो, अरे ये तो मिटने ही वाले हैं। ऐसी संसार में एक भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई अभी तक जो उत्पन्न होके कभी मिटी ही नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी वस्तु है, उनका अंत निश्चित है, जो उत्पन्न होती है वो मिटती है, हमको, आपको, उनको, किसी को भी मिटाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसलिए कोई भी वस्तु को, विषय को, शरीर को, मनुष्य को, प्राणी को, किसी को भी मिटाने का प्रयास मत कीजिए, कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपको गुस्सा भी आ गया, क्रोध भी आ गया, भयंकर क्रोध आ गया किसी वस्तु पे, व्यक्ति पे तो हम सब भक्त लोग हैं, क्रोध नहीं आएगा इतना बुरा, परंतु वस्तु पे मान लो क्रोध आ गया तो मिटाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप मिट जाएगी, उत्पन्न हुई है मिट जाएगी, नहीं। तो इस प्रकार से हमको मारने की जरूरत नहीं है, परंतु जो वस्तु उत्पन्न नहीं हुई, जो वस्तु जन्म नहीं लेती, निर्माण नहीं की जा सकती, जिस वस्तु को उत्पन्न नहीं किया जा सकता उस वस्तु को मिटाया भी नहीं जा सकता, है। जब आत्मा को हम उत्पन्न ही नहीं कर सकते तो मिटाएंगे कैसे? कोई है कंपनी कोई इंडिया में वर्ल्ड में मल्टीनेशनल जो आत्मा को बनाने का काम करती है? इंपोर्टेड आत्मा आईएसआई मार्क वाला आईएसओ 2000 9000 10000 जो भी है, कोई है ऐसा लेवल ब्रांडेड आत्मा? कोई जो उत्पन्न नहीं कर सकते कोई आत्मा, जो उसको निर्माण नहीं कर सकते तो मिटा कैसे सकते? मिटा ही नहीं सकते। इसलिए यहां कहा गया है कि हमने 84 लाख शरीर, हमारी बात चल रही है, हम सब ने अभी तक 84 लाख शरीर प्राप्त किए हैं, नहीं किए 84 लाख योनि? कई बार हो सकता है हमने सारे के सारे योनिया पास की होगी और कई बार की होगी, एक बार नहीं। 84 लक्ष योनि मतलब 84 लक्ष शरीर हमने धारण किए हैं, है ना? कोई एक शरीर तो भी है हमारे साथ अभी तक? एक कोई भी एक भी शरीर अभी तक हमारे साथ में नहीं है, और हम भी कोई भी शरीर के साथ नहीं है जो अभी तक हमने प्राप्त किए है। किसी को याद आता है, अरे मेरा वो शरीर बहुत अच्छा है, वो उधर घूम रहा है कलकत्ता के एक कॉर्नर में, अमेरिका के एक अच्छे बड़े सिटी में, वो शरीर मेरा है, वो उधर घूम रहा है, अभी मैं इधर हूँ। 84 लक्ष योनियों में जितने शरीर प्राप्त किए, कोई भी शरीर ना हमारे साथ है ना हम उनके साथ है। यह जानने की विवेक बुद्धि, विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी। क्या जानने की? आत्मा अविनाशी है, आत्मा को मृत्यु नहीं है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अप्रमेय है। यह जानने की विवेक बुद्धि, विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, ठीक है, नहीं थी। इस शरीर में है जो अभी मिल गया है कि नहीं? कौन चिल्ला रहा है इधर? मनुष्य शरीर में ये विवेक बुद्धि है। कौन सी? और भगवान ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति ज्ञानी है। देखिए कनेक्शन, भगवान इस श्लोक में क्या करे, फिर से पढ़िए तात्पर्य, ट्रांसलेशन पढ़िए।
ये पार्थ जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्म शाश्वत तथा अव्ययी है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है?
वो जो ये जानता है, पोता जी तात्पर्य में कहे कि वो ज्ञानी है, जो ये जानता है कि वो किसको ना मार सकता है ना मरवा सकता है, क्योंकि ना तो वो उस प्रकार से जन्म ही लेता है ना निर्माण होता है, तो कोई क्रिया कार्यकलाप में भाग ही नहीं लेता है। और वो व्यक्ति ज्ञानी है जो ये जानता है। अभी तक 84 लक्ष योनि में तो मालूम ही नहीं पड़ा ना, मालूम पड़ा था क्या कभी कोई योनि में? मालूम ही नहीं चला, पता ही नहीं चला इस बात का। ये तो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी अभी हमने इंपोर्ट की है इस शरीर में, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है ये सॉफ्टवेयर का, ईआर की टेक्नोलॉजी, ये सबसे हाईएस्ट सबसे उच्च स्तर है सारे योनियों का, इसमें ही पता चलता है ज्ञान की बात। इसलिए अभी हम ज्ञान की बात की और आगे चर्चा करेंगे। भगवान ने इस श्लोक में थ्योरी की बात थ्योरी कही है, आगे के श्लोक में दृष्टांत दे रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल बता रहे हैं या एग्जांपल दे रहे हैं, दृष्टांत से यही श्लोक को प्रूव कर रहे हैं आगे के श्लोक में। आगे का श्लोक क्या है? वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक में भगवान दृष्टांत दे रहे इन्हीं बातों का जो अभी तक कहे हैं, इस बात का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल है? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, क्या करता है? पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। भगवान ने क्या किया यहां पे? एग्जाम्पल दिया है जो अभी तक कहे हैं, है ना, 5-7 श्लोक से ही चल रहा है। अब यहां पे सोचे भगवान के अर्जुन को पता नहीं समझा कि नहीं समझा तो इसलिए वो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं उस बात। तो क्या कह रहे हैं? शरीर की उन्होंने वस्त्र के साथ तुलना की है। शायद पहले अध्याय के 13वें श्लोक में कौमारम यौवनम जरा, पहले अध्याय का 13वां श्लोक है, देखिए इससे आपका रिफ्रेश होते जाएगा। पीछे का श्लोक, हाँ दूसरा, पहले का नहीं, दूसरे अध्याय का 13वां क्या है पढ़िए। ट्रांसलेशन पढ़िए।
जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। वीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं
होता। उन्होंने कहा है कौमारम यौवनम जरा, जिस प्रकार से व्यक्ति कुमार अवस्था से युवावस्था में आता है, युवावस्था से वृद्धावस्था में आता है, एवरी टाइम अपना शरीर बदलते रहता है कि नहीं? शरीर बदलता है ना, व्यक्ति हमने बदले है ना, कई बार बदले अभी तक, है कि नहीं? तो शरीर बदले है, यह बात उन्होंने उस समय कही। उसको और अच्छे से उसी बात को उदाहरण देके इस श्लोक में बोल रहे हैं, पर उसमें वो बताया है कि जो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या नहीं होता है, इस प्रकार के परिवर्तन से मोहित नहीं होता है, वो क्या है? धीर सत्र नमयति, धीर व्यक्ति है। यहां क्या बताया है? वो ज्ञानी है, मतलब ऐसे व्यक्ति में कितने गुण हो सकते हैं आप जान सकते हैं? केवल एक बात जानने से, कौन सी? आत्मा अमर है। यह बात जानने से व्यक्ति धीर पुरुष हो सकता है, व्यक्ति ज्ञानी पुरुष हो सकता है, व्यक्ति बहुत अच्छा भक्त हो सकता है। कितना सिंपल फॉर्मूला है, कितना सिंपल है। प्रभुपाद जी ने कम से कम जितने लाइन प्रभुपाद जी ने लिखे होंगे उतनी बार कहा है, क्या क्या कहा है? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। आत्मा नेवर डाइज, आत्मा को कभी मृत्यु नहीं हो सकती। तो केवल इतनी सी बात जानने से भगवान भगवत गीता में कह रहे, क्या क्या कह रहे हैं देखा अभी? धीरस्तत्र न मुझे, जो धीर पुरुष होता है उसको कभी मोह नहीं होता, ऐसे बदलाव को जो समझ लेता है। यहां कहे हैं वो ज्ञानी है, वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उसके पास वो आईटी एक्सपर्ट है, वो है मोस्ट प्रोफेशनल, एक्सपर्ट प्रोफेशनल, उसका भी एडवांस स्पिरिचुअल एसटी प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भगवान भी कितनी बार ये बात बोल रहे हैं, जितनी बार प्रभुपाद जी ने बोला है उतनी बार भगवान बोल रहे हैं। तो कौमारम यौवनम जरा, इसका अर्थ ये होता है कि शरीर के बदलाव से जो व्यक्ति मोहित नहीं होते हैं वो धीर पुरुष कहलाते हैं। 2.13 इस श्लोक में और दूसरा बदल आगे भगवान कह रहे हैं। अभी यहां तक तो आपने देख लिया, जन्म हुआ, जन्म का होने के बाद उस शरीर को फिर छोड़ दिया, नया शरीर कुमार अवस्था का शरीर प्राप्त किया, फिर उसको भी छोड़ दिया, युवावस्था का शरीर प्राप्त कर दिया, युवावस्था का भी शरीर छोड़ दिया, वृद्धावस्था का शरीर प्राप्त कर दिया। अब ये अवस्था 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 नहीं, युवावस्था कुमार अवस्था युवावस्था वृद्धावस्था अवस्था अवस्था। अब इसी श्लोक में अवस्था को ही छोड़ दिया है। अब इस श्लोक में अवस्था का परिवर्तन है। 13वें श्लोक में शरीर का परिवर्तन था, है ना? इस श्लोक में शरीर के अवस्था का ही परिवर्तन कर दिया। क्या फर्क पड़ता है? अवस्था बदल गई अभी, है ना? इसमें कहा गया है कि मनुष्य पुराने वस्त्रों को जिस प्रकार से त्याग करता है वैसे शरीर को त्याग करता है। मतलब शरीर के सारे अवस्था को ही छोड़ दिया, अब ये नई अवस्था में जाएगा, नई सिचुएशन, नई परिस्थिति, नई अवस्था। तो अब ये नई अवस्था में जाएगा। ये नई अवस्था में जाना ये कब निश्चित होता है? मृत्यु के समय ही ये निश्चित हो जाता है कि हमको कहां जाना है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र त्याग देते हैं और नए वस्त्र प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार पुराना शरीर त्याग देते हैं, नया शरीर प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न ये होता है, पुराने वस्त्र हम कब त्याग करते हैं? कौन से कंडीशन में, कौन से स्थिति में हम पुराने वस्त्र त्याग करते हैं? अगर आप सोचिए तो हट जाता है तब पुराना हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, छोटे हो जाते हैं। और बदलाव चाहिए रहता है, बदलाव चाहिए रहता है, ये भी एक कारण है। डिजायर बहुत अच्छा शर्ट है एकदम, लेकिन किसी ने बोला कि क्या बेकार कलर है, ऐसा कलर तो बैन 30 वाले पहनते। कौन सा कलर पहन लिए? अच्छा तुरंत नया भले कर लिया हो, निकाल के बदल देते हैं। शरीर वैसा बदला जा सकता है, शरीर उस प्रकार से त्याग किया जा सकता है, उस शर्ट को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी कि अभी हमको एकदम जो पसंद का शर्ट है वही मिलेगा मार्केट में जाके। एक किसी ने मुझे बोला कि ये क्या सफेद पहनते हो, मैंने निकाल के फेंक दिया, लेकिन मुझे अभी एकदम गोल्डन येलो मिक्स्ड विथ व्हाइट थोड़ा सा ब्लेश ऐसा चाहिए, मिलेगा? छोड़ तो दिया शरीर को, शर्ट को निकाल दिया, डिजायर से मैंने अपनी इच्छा से ऐसा कर दिया, लेकिन अब मेरे पसंद का मिलेगा क्या? यही फर्क है कपड़ा बदलने में और शरीर बदलने में, केवल इतना ही अंतर है। हमारी इच्छा के अनुसार हमको दूसरा शरीर मिलेगा क्या, इसकी गारंटी नहीं है। एक बार कपड़ा मिल सकता है इच्छा के अनुसार, तो अपनी इच्छा के अनुसार अगला शरीर निश्चित होता है जब हम इसी शरीर में रहते हैं तब, परंतु उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण ऐसा नियंत्रण होता तो तुरंत आज मैं आज ये शुक्रवार को आप ऐसा देख रहे हैं, नेक्स्ट शुक्रवार को कुछ अलग ही दिखता था, कोई एकदम बड़े बड़े दांत बाहर आए से ही फूटे हुए, क्योंकि मैंने ऐसी इच्छा की। कोई नहीं, आप सब देव के रूप में आके बैठते थे, बहुत गोल्डन मुकुट पहने हुए, सब देव आपकी इच्छा देव बनना, सब देव देवी देवता आगे बैठे, अपनी इच्छा से होता तो ऐसे होता नहीं, पर कपड़े बदलना अपनी इच्छा से है, परंतु बदलाव भगवान बोल रहे कि कौन से कंडीशन में बदलाव होता है। तो जैसे कहा गया है कि जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है, फट जाता है, छोटा होता है, मतलब अनकंफर्टेबल होता है, कंफर्ट नहीं है, ऐसे सिचुएशन में शरीर डेवलप दिया जा सकता है। लेकिन एक और इसको एक एक्सेप्शनल बात है, एक विशेष बात है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, विशेष लोग, जिनकी चेतना विकसित होती है। चेतना भी कितने प्रकार है बताइए, आवृत्त चेतना, संकुचित, मुकुलित, पूर्ण विकसित। तो जिसमें जो आवृत्त चेतना होती है, आच्छादित और संकुचित, वो जो चेतना होती है वो कहाँ होती है? पेड़ और प्राणियों में, पेड़ वनस्पति में और प्राणियों में। जो विकसित चेतना होती है किसमें होती है? मनुष्य में होती है। तो हमने अभी जिसकी चर्चा की है कि जो साधारण मनुष्य के स्तर पर होते हैं, जिसकी विकसित, पूर्ण विकसित, विशेषकर दो स्तर है, तो विकसित और पूर्ण विकसित, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित। तो अभी जो चर्चा की हमने मुकुलित की बात की है कि ठीक है, साधारणतः जिस प्रकार से शर्ट बदलते उस प्रकार से शरीर बदले जाते हैं, ये नियम है, ये मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है, मनुष्य के लिए लागू नियम है, क्योंकि मुकुलित चेतना है उनकी। पर विकसित और पूर्ण विकसित, जो पूर्ण विकसित के स्तर पे है, सॉरी विकसित के स्तर पे है, क्या उसके लिए ये नियम लागू होगा? कोई बता सकता है लागू होगा क्या? नहीं होगा ना। जिसको भारत रत्न अवार्ड मिल गया उसको भी आप सेकंड स्लीपर में बैठा रहे हैं। हम साधारण जो क्रिमिनल है जिसने बहुत से पाप कर्म किए उसको भी आप सेकंड स्लीपर में बैठाएंगे तो चलेगा क्या? उनको स्पेशली गवर्नमेंट फर्स्ट क्लास एसी देते हैं, है ना, उनको फर्स्ट क्लास एसी बैठने को होता है इनको। तो इस प्रकार से जो पूर्ण सॉरी विकसित जो स्तर है, मुकुलित के आगे का स्तर है विकसित। विकसित के जो स्तर पे होते हैं, मतलब वो योगी होते हैं। कौन होते हैं? योगी लोग होते हैं। योग साधना करके अपने वासनाओं को, इच्छाओं को, विचारों को नियंत्रित किया, कंट्रोल। बुधवार की क्लास में कोई नहीं था इसमें का हमने अपना एक तो महामंत्र नहीं है, उसके बाद ही हमने दूसरा मंत्र दिया है सबको कंट्रोल। ये दूसरा मंत्र है। जब भी कुछ भी करने की इच्छा हो, पहले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कंट्रोल तुरंत बोलना चाहिए अपने को, कंट्रोल। जहां देखोगे आपको क्या लिखना चाहिए? कंट्रोल। तो तभी इंद्रिय जो है नियंत्रण में रहेंगे। बार बार हैमर करना पड़ता है, कंट्रोल प्रभु जी कंट्रोल, डोंट गो आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसलिए कंट्रोल जो योगी होते हैं, योग साधना से अपने विचारों को नियंत्रित रख के इंद्रिय निग्रह करते हैं, इंद्रियों के वासनाओं को सदस्य नहीं करते, उनको इंद्रिय निग्रह करते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो अपने इच्छा के अनुसार शरीर प्राप्त कर सकते हैं, वो कर सकते हैं इच्छा के उस समय, उनकी जो इच्छा, कहते हैं ना भगवान जी भगवत गीता में कहते, क्या कहते हैं? अंत काले जुमाने स्मरण मुक्त्या कलर, जो व्यक्ति अंतिम समय में मेरा स्मरण करेगा उसको मैं, उसका मैं कल्याण करूंगा, मैं ले जाऊंगा उसको वो मुझे प्राप्त करेगा, भगवान कहते हैं। तो जो इच्छा अंतिम समय में रहेगी उस इच्छा को प्राप्त हो जाएगा। तो ये योगी तपस्वी अंतिम समय अपने सारे भौतिक वासना को डिलीट कर देते हैं, उनके अंदर जो डिलीट बटन होता है उसको दबा भी रखते हैं, वो भौतिक वासना जैसे ही उत्पन्न होगी तुरंत डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिक। तो भौतिक वासना उनकी डिलीट होते रहती है, फिर भी मन चंचल रहता है। भौतिक वासनाओं को खत्म करने के बाद भी मन चंचल ही रहता है। तो उस मन को चंचल, मन की चंचलता को शांत स्थिर करने के लिए ये लोग प्राणायाम करते हैं, योगा पंच प्राण को नियंत्रित करते हैं। पंच प्राण को नियंत्रित करने से मन स्थिर होता है, बुद्धि सात्विक हो जाती है, अहम भाव शून्य हो जाता है। तो ये लोग बहुत अच्छा प्राणायाम करते, पंच प्राण को नियंत्रित करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, स्थिर करते हैं, उसकी वजह से मन स्थिर हो जाता है। कई कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है। कभी आपने ध्यान से भी देखा हो, जब बहुत क्रोध आता है तो क्या होता है बताइए, आपका ब्रीदिंग बढ़ता है, वायु प्राणवायु प्राणवायु जितने भी अंदर है उनमें बंदा हो जाता है, राय हो जाता है अंदर, जितने भी प्राणवायु है थोड़ा भी गुस्सा क्यों ना आने दो, फिस 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 होता है जोर जोर से एकदम, होता है कि नहीं, किसको नहीं होता है, ये नेचुरल है, ऐसा होता ही है। बस क्रोध आता है उस समय, यदि आप वायु को प्राणों को नियंत्रित रखते हैं, भयंकर क्रोध आया है या भयंकर डिप्रेशन आया है, डिप्रेशन में भी व्यक्ति और क्रोध में मतलब दोनों कंडीशंस एक्सट्रीम है, इस समय शांति से बैठ के प्राण वायु को मतलब श्वास और उच्छ्वास को नियंत्रित रखिए। बहुत डिप्रेशन में है मान लो, बहुत टेंशन आ गया है, बहुत टेंशन आ गया या बहुत क्रोध हो गया, थोड़ी देर बैठ के प्राणायाम कीजिए। बहुत हेवी प्राणायाम मत कीजिए, शांति से भ्रामरी कीजिए या अनुलोम विलोम कीजिए हरे कृष्णा, ये वक्त का काम नहीं है पर थोड़ा बहुत कर सकते हैं। आप ओंकार गुंजन, भगवान भगवत गीता में कहते हैं मैं ही ओम हूँ, ओंकार स्वरूप मेरा ही है, ओम मतलब भगवान ही है, इसलिए आप भगवान के इस नाम को के रूप में प्राणायाम कर सकते हैं। आप प्रेम से ओंकार गुंजन गुंजन करते करते सोचिए कि भगवान कृष्ण ओंकार के रूप में आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और अब वो आपके ऊर्ध्व भाग में है, इस प्रकार से सोचिए तो क्रोध शांत हो जाएगा। भगवान कृष्ण क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते, तो क्रोध शांत होगा, डिप्रेशन नहीं रहेगा, टेंशन फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा, थोड़ा बदलाव होगा। पर ये जो योगी होते हैं ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ये तो उसके भी आगे की स्टेज पे चले जाते हैं, उसके आगे की स्टेज होती है कुंडलिनी वगैरह, चक्र जागृति और शक्ति केंद्र को जागृत करना वगैरह वगैरह, ये सब करके ये लोग क्या करते हैं, शरीर के सारे प्राणों को ऊर्ध्व दिशा में उच्च भाग, शरीर के दो भाग, एक नीचे का और ऊपर का, ऊपर के भाग में सारे प्राणों को एकत्रित करते हैं। पंच प्राण है ना, सारे प्राण मतलब कितने प्राण है, कौन से विस्तार से चर्चा हुई इसके ऊपर, अरे विस्तार से एक क्लास है उसके ऊपर, प्राण अपान उदान व्यान समान, पांच प्राण है शरीर, ये पांचों प्राण वो योगी क्या करते हैं, ऊर्ध्व ऊपर की दिशा में शरीर के उच्च ऊपर के भाग में एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके पूरा ध्यान करके उनको जहां जाना है उसका ध्यान करके और भगवान का स्मरण करके सब प्राणों को ऊपर लाके ब्रह्म रंध्र से अपने प्राण को ट्रांसफर करते, ब्रह्म रंध्र कोई अज्ञ से अज्ञ चक्र से या ब्रह्म रंध्र से करते हैं, और जब उससे वो जाते हैं तो जहां उनकी इच्छा होती है वहां वो प्राण चले जाते हैं। बहुत बार ऐसे होता है पर उसके लिए बड़ी भारी कठिन तपस्या है, हम सबको हिमालय में जाना पड़ेगा कम से कम 100 साल तो भी एक पैर पे खड़ा रहना पड़ेगा ट्रेन में दो पैर पे खड़े नहीं रह सकते, हिमालय में एक पैर पे क्या खड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से वो सब करने के पश्चात हम यह शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले हम एक चर्चा किए थे 17-18 श्लोक में, शरीर हमारे अंदर तीन व्यक्तित्व है, एक भौतिक शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा आध्यात्मिक शरीर। तो आध्यात्मिक शरीर सूक्ष्म शरीर के द्वारा भौतिक शरीर के तस्व रहता है, बराबर है। चर्चा हुई थी कि जीव जब शरीर को छोड़ता है तो कैसे बाहर जाता है, कौन ले जाता है उसको, याद है सबको, है कि नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से आत्मा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से भौतिक शरीर के एनर्जी देते रहता है, है कि नहीं। पर अब ये सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर के कांटेक्ट में किसके द्वारा रहता है, एजेंट सभी जगह चाहिए ना, बिना एजेंट के आजकल काम होता है नहीं होता है, इधर भी ऐसा ही है, जिसके में भी ऐसा ही है। सूक्ष्म शरीर भौतिक, हम कहते हैं कि मन जैसा कहेगा वैसा शरीर करेगा। मन कहेगा अभी बहुत भूख लगी है पानी पूरी खाओ, तो शरीर पानी पूरी की गाड़ी की तरफ दौड़ते जाएगा, भागते भागते जाएगा। तो मतलब सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर को के साथ इंटरैक्ट करता है, उनके बीच में आदान प्रदान होता है। माध्यम क्या, एजेंट कौन है ये करवाने वाला, मन बुद्धि अहंकार और शरीर, इनके बीच में। मन तो सूक्ष्म शरीर है ही है, चेतना तो सूक्ष्म शरीर के ऊपर की बात है, वो तो आध्यात्मिक शरीर से आता है। अरे आत्मा सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर के बीच में आत्मा आएगा, आत्मा तो इनके भी ऊपर है। आध्यात्मिक शरीर तो उसके भी ऊपर है, देखिए आध्यात्मिक शरीर सबसे ऊपर है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, उसके बाद ये भौतिक शरीर है। तो आध्यात्मिक शरीर का और सूक्ष्म शरीर की चर्चा हमने लास्ट टाइम की है, किस प्रकार से दोनों में रिलेशन है, सूक्ष्म शरीर कैसे ले जाता है आध्यात्मिक शरीर को, दोनों का दो कॉन्शियसनेस चेतना कैसे सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होती है, वगैरह वगैरह। अब वही चेतना या वही आत्मा की शक्ति ये शरीर को प्राप्त होती है ना, चेतना शरीर में है कि नहीं, चेतना तो आध्यात्मिक है ना, तो ये चेतना सूक्ष्म शरीर के द्वारा शरीर को प्राप्त होती है भौतिक शरीर को, बराबर है। तो सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर के बीच में ऐसा क्या है जो पूरे शरीर में हुआ आइटम को ट्रांसपोर्ट करता है, एजेंट के रूप में काम करता है, पंच प्राण, वो है पंच प्राण। ये पांच प्राण मन और बुद्धि, मन बुद्धि और शरीर, इनके बीच में आदान प्रदान करवाते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचे कि प्राण ही नहीं होगा तो मन शरीर को क्या करेगा, प्राण, प्राण क्या करते हैं, प्राण शरीर को भी ठीक रखते हैं और मेंटल मन और बुद्धि को भी इनके अनुसार कार्यरत कराते हैं। बहुत विस्तार से उदान अपान का फंक्शनिंग क्या है वगैरह वगैरह, वो आगे की जब श्लोक आएगा तब चर्चा होगी।
इतना रखना चाहिए कि प्राणों को नियंत्रित रखने से मन स्थिर हो जाए।
तो ब्रह्मरंध्र से ही आत्मा को छोड़ते हैं, जीव को छोड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत शुभ माना गया है। ऊंचा शरीर का ऊपर का जो भाग और नीचे का भाग, ऊपर के भाग से जब शरीर छूटता है तो वो ऊपर के लोगों को जाता है, नीचे के भाग से जब शरीर त्याग होता है तो वो नीचे के लोगों में जाता है। इसी बहुत शास्त्र मनु संहिता या गरुड़ पुराण वगैरह में कहते हैं। इस प्रकार से योगीगण जो है मुनिगण, वो अपने प्राणों को ऊपर की दिशा में एकत्रित करके ऊपर की दिशा से प्राणों आत्मा का त्याग करते हैं ताकि उनको ऊपर के लोग मिल जाए। अब आप बोलेंगे कितना डिफिकल्ट है ये, नहीं कैसा करेंगे ये सब है कि नहीं। इसका कोई कलयुग के जीव क्या कहते हैं, तो फास्ट फूड वाले शॉर्टकट वाले, फास्ट फूड वाले, फास्ट करियर, उसमें फास्ट करियर चाहिए ना, इतना स्लो करियर उधर आगे भी फास्ट करियर चाहिए हो तो फास्ट करियर चाहिए। भगवान जानते थे, भगवान जानते थे कि कलयुग में जीव शॉर्टकट वाला है, शॉर्टकट से। इसलिए भगवान ने 9वें अध्याय का 25वां श्लोक कहा, क्या कहा है देखिए, यान्ति देवता देवान पितृन यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेच। आगे का सबसे महत्व का है, भूतानि यान्ति भूतेच यान्ति मद्या जिनो अपि माम, यान्ति मद्या जिनो अपि माम। अब दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका तो बता दिया कि प्राण यदि ऐसे छोड़ दिए तो अच्छे शरीर में जाते हैं, नेक्स्ट बॉडी। हमको बहुत अच्छा कोट टाई सूट मिल सकता है, मतलब ये कपड़ा खराब हो गया लेकिन पसंद का कपड़ा मिल सकता है छोड़ के, बहुत बेस्ट क्वालिटी का, कौन सा है बहुत बेस्ट कंपनी कपड़े की, बहुत सारे प्रश्न रोमांस बेलेटन रोमांस और क्या क्या होगा, इतने बेस्ट क्वालिटी का और साड़ी में कौन सी अच्छी कंपनी का साड़ी है, वो साड़ी बेस्ट क्वालिटी का साड़ी जो एकदम अच्छा लगता है वो भी प्राप्त हो सकता है। इसका जो पहला तरीका तो हमने बताया कि प्राप्त करने का वो तरीका है प्राण वायु को नियंत्रित करो, योग साधना करो, हिमालय में जाओ, बहुत कठिन है। भगवान ने दूसरा उपचार बता दिया इसके लिए, बोले पूजा करो, सिंपल बात है, ये सब नहीं कर सकते तो पूजा शांति पूजा यानी पूजा करो, मध्याजिमाम आप मध्याजी अतिमाम मध्य आजी आजी मतलब पूजा करो, मध्य मध्याजी मतलब मेरी पूजा करो, माम और मेरे पास आ जाओ। जो लोग कहा यानी देवता देवान जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास चले जाते हैं। पितृ यानी पितृवता जो बार बार पितृपक्ष से चले आए, पितृपक्ष में कोई पितृ की पूजा करते हैं पितृलोक में चले जाएंगे, पितृ से ज्यादा प्रेम हो जाएगा तो इसके पहले हम चर्चा किए कि भक्त का भक्त जब शरीर छोड़ता है, पापात्मा शरीर छोड़ता है तो उसके साथ क्या होता है, पुण्यात्मा शरीर छोड़ता है तो उसके साथ क्या होता है, और भक्त शरीर छोड़ता है तो उसके साथ क्या होता है, याद है भक्त। तो जो भक्त जब शरीर छोड़ता है तो उसके लिए इतनी बड़ी बात होती है कहा के लिए हिमालय में जाने का नहीं, और क्यों सब करना है। इसलिए यान्ति देवता देवान पितृन यान्ति पितृवता भूतान यान्ति भूते, जो भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है, है ना, बहुत से लोग भूतों की भूतों को जागृत करते रहते हैं परंतु वे भूत बन जाते हैं पर भगवान अति महत्व की बात है, यान्ति मध्याजिनो अति माम, यान्ति मध्याजिनो अपि माम, जो मेरी पूजा करता है, वेरी क्लियर, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ प्रेम से रह सकता है। भगवान के साथ रहना मामूली बात है, वो भी बड़े प्रेम के साथ फ्रेंड बनाओ, दोस्ती के साथ सख्य भाव में दास्त, जो आपको अच्छा लगता है भाव में, कितनी बड़ी बात है। ये दूसरा रास्ता है, यदि आप हमको जो चाहिए वो शरीर यदि प्राप्त करना है तो पूजा के माध्यम से किया जा सकता है। पूजा कैसी करना है तो भगवान कहते हैं मध्याजी अपि अपि मतलब मुझे शरण आके भगवान की अच्छे से पूजा करके। इसके आगे भगवद गीता में भगवान कहते हैं मन मना हो मत भक्तो, किस प्रकार से पूजा करनी है तो ये आगे कहते हैं, मन मुझे लगाओ, मेरे में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे दंडवत प्रणाम करो, विस्तार से इस श्लोक में कहा गया है, भगवान ने कहा है। तो ये पूजा का जो आपको कौन सा अच्छा लगा, पूजा वाला अच्छा लगा या हिमालय वाला अच्छा लगा, हिमालय वाले कौन है, फ्लाइट तैयार है अपने संतोषी एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट जाती है सीधा ऊपर से ही ड्रॉप करते हैं क्योंकि उधर हेलीपैड वगैरह नहीं है ना, पैराशूट से ड्रॉप होना पड़ता है उधर तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, पूजा। और पूजा करने का तरीका भगवान कहते हैं मन मना भव मत, मन मना भव मत भक्तो, भक्ति करके मेरी पूजा करो, भक्ति मतलब भगवान का नाम स्मरण करके। थी, आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। तो ये दूसरी विधि हमको बहुत अच्छी लगी हम सबको, तो हम आज से दूसरी विधि का बहुत सीरियसली गंभीरता से पालन करेंगे, क्योंकि हमको हमको हमारी इच्छा के अनुसार हमको शरीर चाहिए ना, नहीं अपनी इच्छा के अनुसार शरीर चाहिए ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। वास्तव में देह परिवर्तन साधारण कपड़े बदलने जैसी बात है, इसलिए बहुत ज्यादा उसके प्रति दुखी या बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच ये सब की आवश्यकता नहीं है। हम जब कपड़ा बदलते हैं पुराना हो जाता है छोड़ निकाल के रख देते हैं, क्या भूल जाते हैं उसको। तो इस प्रकार से कहा गया है ब्रह्मा जी के एक क्षण में, मतलब ब्रह्मा जी का एक सेकंड तो हमारे पृथ्वी के ऊपर लगभग ब्रह्मा जी के एक सेकंड में 1,00,000 वर्ष बीत जाते हैं, अंदाज लगभग अप्रोक्सीमेटली। ब्रह्मा जी का एक सेकंड इनके लिए भी है तो इधर 1,00,000 वर्ष, तो उनके एक सेकंड में इधर कितने शरीर छूटते होंगे और कितने शरीर पकड़ते होंगे, कितना होता है ट्रांजेक्शन बहुत ही ट्रांजेक्शन है। तो ब्रह्मदेव कितने शरीरों को याद रखेंगे, कितनी बार एक ही जीव कितनी बार ब्रह्मदेव के लाइफ टाइम में कितने शरीर प्राप्त करता होगा कितने छोड़ता होगा, लेकिन ब्रह्मदेव को तो याद रखना पड़ता है, तो क्या इतने शरीरों को याद रखेंगे, तो वो किसको याद रखते हैं। लॉजिकल बात है ना, सिंपल बात, ब्रह्मदेव केवल हमको हमारी आत्मा से ही पहचानते, शरीर से नहीं पहचानते, इनके पास तो पहचान ही नहीं पाएंगे, इतना रिकॉर्ड कौन रखेगा, हेवी रिकॉर्ड है इसलिए वो नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है 84 लाख वस्त्रों में से मनुष्य रूपी वस्त्र ही सबसे बढ़िया है, ठीक ठाक है, बेस्ट है। क्यों, क्षमा कीजिए जरा, ये लकड़ा है तो पैर ये हो गया। तो 84 लक्ष योनि में सबसे बेस्ट, सॉरी 84 लक्ष वस्त्रों में सबसे बेस्ट वस्त्र कौन सा है, हजारों कंपनियां कपड़े बनाने वाली सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है, बेस्ट क्वालिटी वाला जो भी है, बेस्ट क्वालिटी वाला मनुष्य है वस्त्र, मनुष्य जो है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हाथ अच्छे हैं, पैर अच्छे हैं, आंखें अच्छी है, सबसे महत्व की बात इसमें बुद्धि अच्छी है, उससे भी बहुत महत्व की बात इस बुद्धि में एक विचार बहुत अच्छा है, कौन सा, भगवत भगवान के साथ संबंध जोड़ने का, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान के पास मुझे जाना है ना, क्या ब्रह्म ज्ञान अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये इसमें है, क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल है, इससे ये जो शरीर बना हुआ है इसमें एक प्रिंसिपल है, कौन सा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। बाकी पशु पक्षी इनके जो कपड़े हैं, इन्हें ये कपड़े पहने हुए हैं, इसमें बहुत मर्यादा है, बहुत कंफर्टेबल कपड़े नहीं है, बड़े दुख देने वाले कपड़े, बार बार फटते हैं, सिलाने के लिए टेलर नहीं मिलते वो कपड़ा फट जाता है तो टेलर नहीं मिलता है, ये कपड़ा फट गया तो तुरंत भक्ति हॉस्पिटल है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम इस कपड़े को रिपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा क्वालिटी का यह कपड़ा है तो इसलिए भगवान ने इसका उदाहरण इस यहाँ पे दिया है, वासा से जीर्णा यथा निहाय, कपड़े का ये जो कपड़ा है मनुष्य शरीर रूपी कपड़ा बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से यूज करो, इसका प्रॉपर यूज करो, इस कपड़े से जो हमको उपयोग करना है वही उपयोग करो, इसका मिस यूज मत करो, इसका पोछा मारने के लिए उपयोग मत करो, बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा है, पोछा मारने के लिए उपयोग मत करो, पोछा मारने के लिए कुछ भी मिलेगा, पोछा ही यदि मारना है तो कोई भी कपड़ा लेके मारो, मार सकते हैं, मतलब इस प्रकार से पशु पक्षी वाले ही कार्यकलाप करना है तो जानवर बनो, मनुष्य क्यों बने? मनुष्य बने हैं तो अच्छा काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान का अर्थ इस श्लोक में यही है कि परिवर्तन होगा, अवस्था बदलेगी। अभी तक जो परिवर्तन था शरीर में का परिवर्तन था, अभी अवस्था का परिवर्तन है। लेकिन फिर भी ऐसा परिवर्तन भी होता है तो दुख करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा मरता नहीं है, वो कहीं तो अच्छी जगह जाता है कि नहीं? कर्म के अनुसार तो सामान्य व्यक्ति के लिए वस्त्र परिवर्तन साधारण है। सामान्यतः हमारे उम्र का जो व्यक्ति होता है उसको बोला है भाई शायद क्या टाइम है, खराब हो गया, बदल दो। फिर ठीक है, बदल दिया, दूसरा ले लिया। कोई अज्ञानी बालक है, छोटा बच्चा है, उसका भी वस्त्र खराब हो गया। पुराना है लेकिन उसको बहुत पसंद है। अब उसको बोलो बेटा ये अभी ये मत पहनो, बहुत खराब हो गया, बहुत ये हो गया, अभी ये फट गया है, इसको मत पहनो, दूसरा पहनो। नया वस्त्र देते हैं तुमको लाके, नया शर्ट, नहीं ये बहुत अच्छा है, मुझे यही चाहिए, मुझे पसंद है ये, बहुत अच्छा है, मैं ये पहनूंगा, नया नहीं चाहिए। लेकिन जब माता बच्चे को बहुत आग्रह करती है, आग्रह से भी नहीं सुनता है, तो जानबूझ के निकाल के दूसरा वस्त्र देती है। तो बच्चा अज्ञानी है, अज्ञानता की वजह से बहुत रोता है। भगवान का यहाँ वस्त्र का उदाहरण देने का तात्पर्य भी यही है कि जो वस्त्र बदल जाता है तो बहुत ज्यादा दुख करने की आवश्यकता नहीं है, नया वस्त्र तैयार है। परंतु जो समझदार होते थोड़े बहुत, वो समझ जाते हैं कि ठीक है, नया वस्त्र मिल रहा है। शास्त्र में जो थोड़े बहुत समझने का जो शास्त्र को प्रयास करते सत्संगी जो होते हैं वो समझ जाते हैं। परंतु जिनको सत्संग का लाभ नहीं होता है वो जीवन भर व्यतीत होते हैं अज्ञानता की। जैसे बालक को क्या है? अज्ञानता है, क्योंकि सत्संग का प्रभाव नहीं है। भगवान के साथ हमारा रिश्ता क्या है पता नहीं है, भगवान परम पिता है ये पता नहीं है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, नियंता है, ईश्वर है, परम ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है, सब कुछ है, ये जानते हैं। तो हम ये जानते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हमारा नया कपड़ा कहीं ना कहीं रखा है, वो देंगे, जब वो बोल रहे दिया है तो स्वीकार करना चाहिए। पर अज्ञानता के कारण कभी कभी व्यक्ति बहुत व्यथित हो जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। भगवान इस श्लोक में ये कह रहे कि अर्जुन क्यों दुखी हो रहे हो, दुख की क्या बात है, उनके लिए कपड़े तैयार है दूसरे बहुत अच्छे क्वालिटी के, तो सब लोग अच्छे कर्म किए जीवन में, कोई खराब किसी का कर्म किसी ने किया नहीं, खराब कर्म किया नहीं तो उसको अच्छा ही शर्ट मिलेगा, अच्छा ही ड्रेस मिलेगा। इस प्रकार से अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं आप चिंता मत करो। अच्छा, तो प्रश्न ये कहा सकता है, हमको किसी ने ऐसे प्रवचन में एक बार प्रश्न पूछा था, बोले प्रभु जी आप बहुत दो घंटे से वो भगवत गीता दो तीन पांच दिन में तीन दिन का क्लास था, उसमें हम दो तीन ही विषय लिए थे, मैं भगवान और आत्मा, मतलब मैं मतलब शरीर मन, दूसरे दिन आत्मा और तीसरे दिन भगवान, बस। तो जब आत्मा की चर्चा हुई तो बोले प्रभु जी आपने पहले भी दिन आत्मा के बारे में बताया तीन घंटा, दूसरे भी दिन तीन घंटा आत्मा के बारे में, और आज भी भगवान का विषय तो भी आत्मा ही और आप एक ही बात पे बात बात बार बार बोल रहे हैं, आत्मा मरता नहीं है, आत्मा जन्म नहीं लेता है, अजन्मा। तो ये संसार में इतनी पॉपुलेशन कैसे हो गई जब आत्मा जन्म नहीं लेता है तो इतनी जनसंख्या कैसे बढ़ गई? लेकिन प्रश्न आया आपके मन में, किसी ने हमको पूछा था ऐसे, इतनी जनसंख्या कैसे बन गई है? तो जैसे कि भगवान ने इस श्लोक में कहा है कि आत्मा ट्रांसफर होता है, शरीर छोड़ता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में। तो ये जो शरीर छोड़ के इधर उधर जाने की जो स्थिति है ना वो इतना गंभीर स्थिति है, बड़ी गंभीर स्थिति है। आप सुबह 8:30 बजे ये SC रोड से, मॉर्निंग टाइम में SC रोड से अपने व्हीकल से जाते देखिए ऑफिस साइड में कितना ट्रैफिक रहता है, भयंकर हेवी जाम रहता है। ऐसे ही ये यूनिवर्स में कोई लोग ऊपर से आ रहे हैं, कोई महर्लोक से आ रहे हैं, कोई जीवात्मा तपोलोक से आ रहे हैं, कोई पृथ्वी से जा रहे हैं, कोई उधर से आ रहे हैं, सात लोग ऊपर है, ये पृथ्वी लोग है, इतने जीवात्मा इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं। वो पैसिफिक ओशन के ऊपर कभी आपने फ्लाइट में देखा होगा, ट्रैफिक ट्रैवल किया होगा तो ऐसा ऊपर देखेंगे ना कभी, तो इतने प्लेन्स रहते हैं ऊपर, ऐसे रहते हैं अपने बाजू में ही चल रहे हैं, इधर से इधर एकदम हेवी ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक। ये जो ट्रैफिक है उससे भी 100,000 टाइम्स भयंकर ट्रैफिक है। कोई आत्मा उधर से आ रहा है, कोई आत्मा उधर से जा रहा है, कोई आत्मा इधर से, कोई बर्ड का आत्मा, कोई मनुष्य का आत्मा, कोई यक्ष का आत्मा, कोई भूत का आत्मा, इतना भयानक ट्रैफिक है ऊपर इस स्पेस में। सब कहीं से छूट के इधर जा रहे, कोई उधर जा रहे, कोई उधर जा रहे, कोई इधर जा रहे, बहुत से आत्मा पृथ्वी से आ रहे, बहुत से आत्मा पृथ्वी से जा रहे। पर वास्तव में जनसंख्या का यदि विषय हम समझे कि ठीक है भाई, जनसंख्या वास्तव में लिमिट से ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो अनेक जीवात्मा जो अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर को प्राप्त करते हैं, जैसी जैसी उनकी इच्छाएं होती है, संस्कार होते हैं, उसके अनुसार कर्मों के अनुसार अच्छे कर्म किए तो अच्छा प्राप्त करेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा प्राप्त करेगा, इसके अनुसार शरीर प्राप्त करने की होड़ रची हुई है। तो बहुत सारे आत्मा, कोई पशु है, पशु का आदमी मनुष्य बन रहा है, कोई धरातल पे आ रहा है, तो इस प्रकार से संख्या तो वास्तव में इस प्रकार से बढ़ रही है। लेकिन दूसरा उसका कारण ये हो सकता है कि जनसंख्या भयंकर बढ़ रही है, अनलिमिटेड, और संसाधन जो है कम पड़ रहे हैं, नहीं पड़े आगे और ज्यादा, चीन वगैरह नहीं है, कोई दूसरे देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, इन सब देशों में देखेंगे आप तो संसाधन बहुत कम हो रहे हैं और मनुष्य की संख्या, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। तो भगवान एक ओर से ये बता रहे हैं, इंक्रीज पॉपुलेशन और डिक्रीज रिसोर्सेस, इट मीन्स भगवान हमको बताना चाह रहे कि अभी समझो वस्तुओं को एकत्रित करने में मत लगो, केवल भौतिकता को मत देखो, केवल वस्तुओं को मत जुटाओ, केवल बाह्य दृष्टि से मत देखो। ऐसा समय आएगा कि इन सब वस्तुओं का त्याग करना कंपल्सरी हो जाएगा, क्योंकि देखो अभी तो गैस भी नहीं मिलेगा, अभी 5 साल बाद अभी महंगा किया है, बाद में मिलेगा ही नहीं, बाद में मिलेगा, अभी महंगा, अभी 6 महीने में 2 सिलेंडर, लोग अब क्या करोगे, संसाधन कम पड़ रहे हैं, मनुष्यों की संख्या ज्यादा हो रही है। इसका कारण है जो ये दिखाना चाहते हैं भगवान कि देखो ये भौतिकता की आसक्ति जो है इसको कम करो, इसको कम करो, यदि ये कम हो गए तो करोड़ों के अब्जो बिलियन ट्रिलियन भी पॉपुलेशन हो जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु ये जो रिसोर्सेस की, जो साधनों की होड़ मची हुई है, एक आदमी सोचता है कि मेरे पास सारे साधन हो जाने चाहिए, दूसरा सोचता है मेरे पास सब हो जाना चाहिए, तो इसके कारण ऐसी परिस्थिति भयंकर हो जाएगी कि एक दिन हमको कंपल्शन हो जाएगा तपस्या करना, हिमालय में जाना कंपल्सरी हो जाएगा, वो भी चल के चल के, फेल ही नहीं रहेगा फ्लाइट के लिए। तो ये भगवान का प्लान है। दूसरी मुख्य बात यह कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका मुख्य कारण यह है कि जीवात्माएं, ये नहीं सोचना चाहिए कि पृथ्वी की इतनी जनसंख्या है, शास्त्र में वर्णन है आध्यात्मिक जगत की संख्या क्या है, भागवतम में भी वर्णन है, गरुड़ पुराण में भी वर्णन है, वहां कितने लोग रहते हैं, हाँ, 3 पद केवल, 3/4 ऑफ, क्या बोल रहे थे जी, 4 times ही करें, मतलब ये नहीं है 1/4 हो गया ना। शास्त्र में वर्णन है कि इतना इससे ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना उधर का पॉपुलेशन है, इतने लोग उधर है, मतलब आप सोचिए कि पुण्यात्मा कितने हैं, मतलब भक्त कितने हैं, और हम इधर ही है। अब तो इधर है, ठीक बात है, बहुत अच्छी जगह आ गए, अच्छे कपड़े भी पहने हुए हैं, नए नए बेस्ट क्लोथ है। अब हमको इधर की पॉपुलेशन बढ़ाना है, इधर की पॉपुलेशन बढ़ने से संसाधन की कमी हो सकती है, शरीर को टॉर्चर हो सकता है, उधर की पॉपुलेशन बढ़ने से आनंद ही आनंद प्राप्त होता है, उधर कोई संसाधन की कमी है ही नहीं, उधर तो इच्छा करो संसाधन तैयार हो जाता है, इच्छा करो गैस चाहिए तो सिलेंडर तैयार है, नंबर लगाने की जरूरत नहीं, चिंता बनी धाम है, है कि नहीं, प्रसाद तो प्रसाद का तो पूछिए मत, प्रसाद तो ऑलवेज संशयस प्रसादन पंच पकवान, तो वहां तो कोई संसाधन जुटाने की आवश्यकता है क्या, कुछ आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए संसार के इस संसार से ज्यादा उस संसार की संख्या बहुत ज्यादा है, इस संसार में संख्या इसलिए ज्यादा हो गई कि भगवान हमको सिखाना चाहते हैं, कम से कम अभी तो भी अभी भी समय नहीं गया है, जरा इन वस्तुओं के चक्कर में मत पड़ो, थोड़ा वस्तुओं को कम करो, आध्यात्म की ओर बढ़ो। तो भक्त क्या करते हैं, तो भक्त केवल भगवान का चिंतन स्मरण करते हैं और भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। प्रभुपाद महाराज ने बहुत सुंदर एक भजन लिखा हुआ है, उस भजन में प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आप तो भगवान हो, आपको जो करना है वो मेरे साथ करो, आपको मुझे मारना है मारो, टॉर्चर करना है करो, फेंकना है फेंको, जो करना है करो, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूं, करना आपको जो करना है करो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने दिखाया कि इस प्रकार से भगवान पे डिपेंड हो जाएंगे तो भगवान तो ठीक जगह पे नहीं जाएंगे। भक्त तो हमेशा ये सोचता है कि मुझे ये सब सोचना नहीं है, मुझे जो चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में कहते हैं कि आप चाहे जो करो, भलाई मेरे पास कुछ न रहे, मुझे मुझे ज्ञान न रहे, मुझे बुद्धि न रहे, मुझे मैं कीड़ा अगला जन्म मेरा कीड़े का हो जाए, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कीड़े का हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बात भगवान मेरे से कभी मत छीनना। बोले क्या, मेरे मुख से हमेशा आपका नाम आते रहना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आवक जावक का हमको कुछ ज्यादा कंसर्न रखने की आवश्यकता नहीं, केवल हमको भगवान का नाम की चिंता रखना है, ये नाम हमारा छूट न जाए, ये नाम हमसे छूट न जाए, इसकी हमें चिंता करनी चाहिए, उसका प्रेम से उच्चारण करते रहना चाहिए। और ये सब बातें भगवान ने अर्जुन को इसलिए बताई क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज हो जाए, जब भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब बातों को याद करना चाहिए, जब मोहित हो जाते हैं, भौतिक संसार में फंस जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, तब इन बातों को स्मरण करना चाहिए कि भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, भगवान अर्जुन का भी यही दशा हुआ, उन्होंने क्या कहा अर्जुन को, उन्होंने ये कहा कि तुम चिंता मत करो, शरीर को शरीर का मृत्यु है, आत्मा का मृत्यु नहीं है, आत्मा की तरफ देखो, उसको कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपाल की जय। कोई प्रश्न है बोलिए।
भगवान भगवत गीता सुना रहे थे तो वहाँ पे जितने लोग थे, जितना करोड़ों सैन्य थे, वो सब सुन रहे थे कि नहीं?
बहुत जगह महाभारत में इसका वर्णन है कि जब भगवान ने भगवत गीता सुनाई तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में ये संवाद हुआ और इसको सुना धृतराष्ट्र ने संजय के द्वारा। कहीं कहीं भी इसमें वर्णन है कि भीष्म ने भी इसका इसको सुना है, कहीं कहीं कहा कि भीष्म और द्रोणाचार्य ने इसको सुना है गुरुओं ने, पर जो मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो धृतराष्ट्र संजय अर्जुन इन्होंने भगवद गीता सुनी, जो विराट रूप का दर्शन है वो भी केवल अर्जुन को हुआ है, क्योंकि वो संजय बता नहीं पाए, उन्होंने बताया कि केवल विराट रूप, लेकिन दर्शन होना वो अलग बात है, पर दर्शन जो हुआ है वो व्यास अर्जुन को दर्शन हुआ, इतना बड़ा दर्शन हुआ। लेकिन आप कहेंगे फिर इतने बड़े सैन्य थे, उन्होंने इनका दर्शन दिया कि नहीं दिया, ये भी प्रश्न है। तो जब भगवान का इतना बड़ा विराट रूप हुआ तो सब लोग इतने भयभीत हो गए कि सबने आंख बंद कर दी भय के कारण। क्या हो गया, आंख बंद, डर जाते थे, कभी भी आंख बंद कर देते लोग, तो आज बंद कर दी तो विराट रूप का हमको दर्शन नहीं हुआ, ऐसे भी वर्णन है, आचार्यगण कहते हैं। अर्जुन को भी दृष्टि देना पड़ा भगवान को कि भगवती डर जाएगा। अर्जुन बोला भी नहीं, मुझे तो आपका वही रूप ज्यादा अच्छा लगता है, ये नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान की जो दिव्य वाणी है, भगवान की जो गीता का उपदेश आप यदि इसमें देखेंगे, पूरे भगवत गीता में बार बार भगवान ने कहा हे पार्थ, हे अर्जुन, हे पार्थ, मतलब इसका अर्थ है कि भगवान ने अर्जुन को ही भगवत गीता सुनाए। तो एक संप्रदाय है, वो कहते हैं कि भीम भी इस वक्त वहां थे, भीम ने भी भगवत गीता सुनी, इसलिए भगवान जो अंतिम श्लोक है संजय कहते क्या कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनंतर। तो वो लोग कहते हैं यत्र ऋतोदर, क्या यत्र ऋतोदर भीम, यत्र गदाधर, यत्र गदाधर भीम, यत्र योगेश्वर कृष्ण, मतलब जहां गदाधर भीम है जहां कृष्ण है वहां। तो अनेक यहाँ पर भक्त जो वैष्णव तात्पर्य में कहा गया, प्रभुपाद जी ने जो कहा है वो ये कि अर्जुन को भगवद गीता समझ में आई, बाकी लोग भय के मारे समझ नहीं पाए, या बाकी भीष्मदेव और द्रोणाचार्य, क्योंकि कहते हैं कुछ लोग सुना है, इसके तात्पर्य में नहीं है, लेकिन कहते हैं उन्होंने सुना है, संजय और धृतराष्ट्र इन्होंने दूर से भगवद गीता का श्रवण किया है।
जीवात्मा देहात्मा और इंद्रिय के भोग में वो जैसे आपने बताया था ये लाइट है उसके ऊपर कोई पेपर हम लगाते हैं रेड कलर का, इसका प्रकाश भी वैसे ही गिरता है। तो ये जब आत्मा ये शरीर में आता है तो इंद्रियों के कारण वो सब डिमांड करता है, लेकिन जब हमारे कर्म इतने गंदे रहते तो हमको नरक मिलते। तो हमको ये जो शरीर मिला है अभी ये मटीरियल वर्ल्ड में, तो वो आत्मा के ऊपर जो लेयर चढ़ा हुआ है उसके कारण हमारा वैसा कर्म होता है, लेकिन जब आत्मा यानी हमारा बॉडी ये शरीर छोड़ता है तो जब हम नरक में जाते हैं तो वो आत्मा के ऊपर वो लेयर चढ़ा हुआ रहता है, वो सब वैसा ही शरीर मिलता है, और वो दुख किसको मिलता है, वो बॉडी को मिलता है ना कि आत्मा को मिलता है।
लास्ट टाइम इसका उत्तर दिया था लास्ट फ्राइडे को, आप बताइए कौन बता सकता है उत्तर, बता सकता है कोई लास्ट टाइम सबने से, जब जीव शरीर को छोड़ता है, शरीर छोड़ के वो निकल जाता है, पर उसके कर्मों के अनुसार उसके इच्छाओं के अनुसार आत्मा कैसे जाता है, अकेले जाता है क्या, कौन ले जाता है आत्मा को, सूक्ष्म शरीर ले जाता है। सूक्ष्म शरीर मतलब क्या, जिसमें मन मुख्य है ना, सूक्ष्म शरीर आत्मा को ले जाता है। सूक्ष्म शरीर में मन है, मन में क्या रहते हैं, विचार डिजायर्स इच्छाएं, उन वो इच्छा डिजायर्स वासना है, वो क्यों आती है, क्योंकि जब वो आत्मा उस शरीर में था तो वो शरीर जो कुछ भी कर्म करते थे वो कर्म के अनुसार इच्छाएं उत्पन्न होती थी। मैं मान लो शेयर मार्केट में काम करता हूँ तो शेयर मार्केट के अनुसार रोज जो मैं डीलिंग करता हूँ, रात भर में सोचूंगा कि कल का मैं ट्रेड सुबह क्या करूंगा उठ के, रात भर सोचूंगा, दूसरे दिन सोचूंगा, तीसरे दिन सोचूंगा, 50 साल के जीवन में 60 साल तक सोचूंगा, फिर कितना एडजस्टमेंट करना है, फंड कहाँ से लाना है, किसका पैसा है, हमारे ऊपर संस्कार सारे लोगों का, इन्वेस्टर का, अपना है, मार्केट का है, बारीक जिसके संपर्क में है हम, उसका हमारे ऊपर हमारे कर्मों के अनुसार हमारी इच्छाएं बनती है, क्योंकि कर्म से रिएक्शन आती रहती है। एक काम करो, एक छोटा सा काम करो, उसमें से हजार विचार उत्पन्न हो जाते हैं। छोटा सा काम किया है लेकिन विचार 1000 उत्पन्न हो गए, और वो विचार इधर स्टोर हाउस में फिट हो जाते, जमा हो जाते हैं। अंतिम समय ये जो सूक्ष्म शरीर है, जो ये सब स्टोर हाउस बना चुका है, इसमें कौन से विचारों को बहुत ज्यादा प्रभाव है और कौन से विचारों को भोगना चाहता है ये आत्मा, तो नेचुरली जिस विचारों का प्रभाव होगा उस मन के ऊपर, उसी विचारों को भोगना चाहता है मन। तो उस प्रकार से ये मन और सूक्ष्म शरीर आत्मा को वही भोग प्राप्त होने के लिए जो भोग ये चाहता है वो भोग प्राप्त होने के लिए उस शरीर में दूसरी जगह ले जाता है जहां वो शरीर ऑलरेडी कहीं तो भी बन रहा होता है। क्यों? क्योंकि मेरी मान लो डिजायर की नेक्स्ट टाइम मुझे है ना शेयर ब्रोकर बनना है तो कहीं तो कोई कंपनी में कोई स्टॉक एक्सचेंज में कोई ब्रोकर पैदा होने वाला होता है इधर मेरा मृत्यु होने वाला रहता है तो ये मृत्यु होता है तो बराबर ये ब्रोकर के शरीर में अरेंजमेंट हो जाती है तो बाकी ब्रोकर बन जाता है किसी को। तो ये कर्मों के अनुसार होता है। शेयर मार्केट से आप रिलेटेड इसमें शेयर मार्केट का उदाहरण दिया वैसे इट्स अबाउट एनी कर्म कोई भी कर्म। तो जब ये आत्मा छूटता है अब मान लो इसमें बहुत सारे बुरे कर्म भी तो किए होंगे उसका भी तो इसके ऊपर इफेक्ट है जो कुछ हम करते हैं उसका हमको रिएक्शन आता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो किया है उसको जो बुरा है तो उगेगा। यदि कर्म खराब किए हैं तो हमको उसकी शिक्षा मिलेगी। जो चोर होता है वो कभी जेब कतरा होगा 100-200 रुपए होगा तो पकेट मार लिया होगा तो पुलिस पकड़ेगा उसको 2-4 दिन अपने पास रखेगा छोड़ देगा। कोई गरड़े को एकदम जिसने डाका डाला हो कोई लोगों को डाका डाल कर मार दिया हो उसको पकड़ लेंगे पुलिस उसको क्या करके छोड़ देंगे क्या? उसके अनुसार उसको शिक्षा मिलेगी उसके लिए वैसे जेल की अरेंजमेंट है इसके लिए वैसे जेल प्रत्येक गुनहगार को उसके गुना के अनुसार जेल की अरेंजमेंट है काम की पनिशमेंट की अरेंजमेंट है। उसी प्रकार से जब ये कर्म खराब हुए होंगे हमारे तो खराब कर्मों का फल प्राप्त करना ही पड़ता है। तो वहां पे यमराज क्या करते हैं हमको एक टेम्पररी बॉडी देते हैं इस जीवात्मा को जो सूक्ष्म शरीर के साथ है उसको एक टेम्पररी शरीर दिया जाता है और वो शरीर को भयंकर टॉर्चर किया जाता है। लास्ट समय हमने चर्चा की थी किस प्रकार का टॉर्चर होता है वो टॉर्चर दिया जाता है तो उसकी जो टॉर्चर है जो दुख है वास्तव में दुख का अनुभव कौन करता है? मन करता है। यदि आपको एनेस्थेसिया दे दिया धूल का इंजेक्शन दे दिया और पूरे शरीर के ऊपर सुरा चला तो भी कुछ नहीं होगा आपको क्योंकि मन जो है नम हो गया माइंड विचार शक्ति को गुंगी गुंग कर दिया है मोहित कर दिया मुंह हेते मोह में चले गए थर्ड वर्ल्ड में अब शरीर के साथ कुछ भी करो कुछ नहीं होगा। इसका अर्थ ये जैसे ही वो मन अपने स्तर पे आ जाता है ओरिजिनल जगह पे आ जाता है तुरंत वेदना शुरू हो जाती है लेकिन इसका उदाहरण आप यदि देखें उदाहरण बहुत गलत है खराब है परंतु उदाहरण है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं बड़ा धमका भी आपने देखा होगा रस्ते पे है ना उसका मन अनकंट्रोल मन को कुछ भी पता नहीं है क्या बोल रहा है क्या कर रहा है मन को कोई फर्क नहीं मतलब जो भी वो कर रहा है उसको मन के व्हील्स मन के मोह के आधार पर कर रहा है उसका मार मारो भी चटा भी मारो हाँ उसको कुछ भी बोल रहा है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा शारीरिक स्तर पर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वास्तव में दुख का अनुभव कौन करता है? मन मतलब सूक्ष्म शरीर और वो दुख का अनुभव करने के लिए उसको भौतिक शरीर चाहिए रहता है अकेले नहीं कर सकता भौतिक शरीर चाहिए रहता है इसलिए उसको भौतिक शरीर टेंपर में दिया जाता है और खुद टॉर्चर किया जाता है कर्मों के अनुसार। जब वो टॉर्चर खत्म हो जाता है तब जाके उसके अच्छा के अनुसार उसके कर्म के अनुसार उसको दूसरा शरीर दिया जाता है और फिर दूसरा शरीर प्राप्त होता है। पर जो योगी होते हैं वो सब प्रोसेस को स्किप करते हैं क्योंकि इनके कोई कर्म ही नहीं होते। इनके जो कर्म होते हैं वो कर्म पुण्य कर्म होते हैं पुण्य कर्म के अनुसार वो अगला शरीर जैसी इच्छा है प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके तो कोई भी पुण्य कर्म की भी इच्छा नहीं होती इनकी तो एकदम हरी इच्छा रहती है एकदम सुप्रीम इच्छा जो है वह स्पिरिचुअल आध्यात्मिक भगवान की सेवा। जैसे बुधवार की क्लास में हमने चर्चा की थी कि भगवान के चरण की सेवा चरण कमल की सेवा करने से क्या होता है तो जो भगवान के चरणों की सेवा की जिसको इच्छा होती है वो ये सब चक्कर में नहीं रहता है साक्षात हमें बताता है कि साक्षात यमराज उनका स्वागत के लिए तैयार रहते हैं कि जा रहे हैं उधर अभी दूसरे रस्ते से तो वो अपने गेट पे आगे खड़े होकर देखते रहते हैं कि वो जाएंगे तो मैं जरा दर्शन कर लूंगा। एक बार महाराज जनक अपने विमान में बैठ के ऐसे घूम रहे थे, संभव उनके विमान को क्या है टेक ऑफ में लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट पे सिग्नल नहीं मिला तो धीरे धीरे भ्रमण करते रहे, गलती से यमपुरी चले गए। यमपुरी के ऊपर यमलोक के ऊपर उनका विमान घूम रहा था तो अचानक जब उन्होंने ऐसे नीचे देखा कि अरे ये तो यमपुरी है, विमान से खिड़की के बाहर ऐसे देखा ये तो यमपुरी है, क्योंकि बहुत शुद्ध भक्त है, भागवत है, शुद्ध भक्त का केवल नजर यमपुरी में पड़ गया। उस समय जितने भी उस यमलोक में जीव प्रताड़ित हो रहे थे, शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, फंसे हुए थे, सब तुरंत निवृत्त हो गए, तुरंत मुक्त हो गए। केवल भक्त शुद्ध भक्त का एक देखना है एक बार। तो इस प्रकार से भक्ति की हम बार बार बोलते कि भक्ति भक्ति करो भक्ति करो भक्ति, लेकिन हमारा मन इतना इल्यूजन हो सकता है कि उसको फुस यही ज्यादा अच्छा लगता है। सर नीचे करो, पैर ऊपर करो, प्रताड़ित हो जाओ, कष्ट सहन करो, इसमें मजा आता है। तो भगवान कहते सादी बात है, प्रेम करो, सिंपल बात है। तो प्रश्न ठीक प्रश्न पूछना ही चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन बातों को नहीं समझते तब तक भक्ति को नहीं समझ सकते। तो उत्तर मिल गया आपको, ठीक है। हाँ बोलिए। जो बलि महाराज को वामन देव ने दर्शन दिया, शॉर्ट में बताते आते भी नहीं थे, बलि महाराज को के लिए वामन देव आए, उन्होंने उनके सर पे पैर रखा और उनको किया, और उनके जो पूर्वज है कल्लाल महाराज, जो उन्होंने ये देखा तो इतने हर्षित हो गए, इतने आनंदित हो गए कि साक्षात नीचे आ गए बोलने वाले प्रहलाद को और भगवान सॉरी बलि महाराज को, कल्लाल महाराज और भगवान को भी। प्रहलाद महाराज बोल रहे कि हम हमारा पूरा कुल इतना बड़ा बहुत धन्य है कि आप बार बार हमारे कुल में आके दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि क्योंकि इस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त था, इसलिए इस कुल के सभी को मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ यह है कि यदि भक्त है कुल में तो इसे अच्छे से भक्ति यदि की तो सभी को भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, उसके पूर्वजों को भी। पर फिर भी हमारी भक्ति शुद्ध करने के लिए, हम भक्ति के शुद्ध स्तर में आने के लिए हम किसी को भी नाराज नहीं करते या किसी का भी रोष नहीं लेते। ना हम देवी देवताओं का रोष लेते हैं, ना हम पितरों का रोष लेते हैं, ना हम भूतों का रोष लेते हैं। हम भक्त हैं, हम प्रेम मार्ग जानते हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं, राक्षसों से भी प्रेम करते हैं, भूतों से भी प्रेम करते हैं, किसी के से रोष नहीं लेते हैं। इसलिए पितृ पक्ष में भी हम भगवान से ही प्रार्थना करते कि हे भगवान मेरे सारे पूर्वजों को आप दर्शन दीजिए, तो जहां कोई भी स्थिति में हो उनको और भी उनका कल्याण कीजिए, उनको उच्च स्तर पर उनको ले जाइए। इसके इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। शास्त्र में वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु ने भी पितृपक्ष मतलब श्राद्ध वगैरह किया है, शिवास ठाकुर वगैरह श्वेताचार्य ने भी ये किया है सब। तो करना इसलिए है ना कि हमको उसमें उस पितृलोक में जाना है, पितृलोक में जाने के लिए हमको नहीं करना है, इस भाव से नहीं करना है। यदि करना ही है तो भगवान के भक्ति के माध्यम से वो कीजिए, कर्मकांड के माध्यम से वो मत कीजिए, प्रेमा भक्ति के मार्ग से वो कीजिए। भगवान के साथ प्रेम करके, भगवान के साथ की भक्ति करके, भगवान के नाम का शुद्ध उच्चारण करके पितरों को शांत कीजिए। भक्तों की सेवा है, इसलिए मंदिरों में भी नोटिस लगती थी, मंदिरों में भक्तों की सेवा कीजिए, मंदिरों में अन्नदान दीजिए, इस प्रकार से होता है, प्रसाद संसर कर सकते हैं। अन्नदान का बहुत महिमा होता है इस पितृ पक्ष में, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समस्त भक्तवृंद की।